Iran Radio Podcast।
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। हिंदुस्तान में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के लागू होने के कुछ समय बाद बड़ी संख्या में किसानों को अपने घरों, खेतों और आय से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 26वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की, जिनके चलते बड़ी संख्या में किसानों को अपने घरों, खेतों और आय से हाथ धोना पड़ा। इनमें से कई भूमिहीन और बेघर किसान भुखमरी से बचने के लिए ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की रक्षा के लिए अपने ही देशवासियों के मुकाबले में खड़े हो गए। गरीबी और भुखमरी की वजह से कई लोग अंग्रेज़ों के उत्पीड़न को नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर थे। वे खुद को और अपने बच्चों को मौत से बचाने के लिए न चाहते हुए भी अपने देश पर कब्जा करने वालों की सेवा कर रहे थे। नंगे पैर भारतीयों की ब्रिटिश सेना में सेवा करने की उत्सुकता इतनी थी कि कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बड़े अधिकारियों और लगभग 30% सैनिकों को छोड़कर बाकी सभी भारतीय थे। भारतीय पुरुषों ने भूख, अत्यधिक करों और लगान से बचने के लिए सेना में शामिल होने में रुचि दिखाई, क्योंकि ये कर और लगान किसी भयानक मानसिक और शारीरिक यात्रा से कम नहीं थे। इसी वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों को सेना में भर्ती करने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित कर दिए, जिसके आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाता था। मराठा पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाके का एक कौमी समूह था जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था, जिसकी वजह से कंपनी की सेना को उनकी भूमि पर कब्जा करने में काफ़ी कठिनाई हुई थी। लेकिन उसके बाद ये लोग भी कंपनी के सिपाही बनना चाहते थे। अंग्रेज़ मराठों के संघर्ष और दृढ़ता को नहीं भूले थे, इसीलिए वे सेना में उन्हें भर्ती करने से डरते थे। लेकिन मराठों के एक समूह ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा। बम्बई प्रांत में रहने वाले हम मराठों ने ब्रिटिश जीवन के आगमन का अनुभव किया है और हम उन विशेषाधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य हमारे लोगों को प्रदान करेगा। महान महारानी विक्टोरिया ने महत्वपूर्ण पदों पर हमारे लोगों की नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन हम भी महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने की उम्मीद नहीं करते। चूँकि हम अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं और इन पदों के लायक नहीं, इसलिए हम विनम्रतापूर्वक सेना या पुलिस में भर्ती होने का अनुरोध करते हैं। अगर ब्रिटिश सरकार की नज़र में हमारे लिए सैनिक के रूप में सेवा करना संभव नहीं है तो हम नौकर या खच्चर हाँकने वाले के रूप में सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। अंग्रेज़ जो मराठों की बहादुरी के बारे में जानते थे और डरते थे कि कहीं वे सेना में भर्ती होकर ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत न कर दें, इस पत्र के बाद उन्होंने उनके एक समूह को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों का उपयोग न सिर्फ भारत में अपने विरोधियों को कुचलने के लिए किया, बल्कि भारत के बाहर बर्मा या चीन जैसे देशों में भी उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। इन देशों के लोगों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के कारण वहां के लोग भारतीयों से नफरत करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज़ इस बात से संतुष्ट और खुश थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके कब्जे वाले क्षेत्रों के लोग एकजुट हों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बाहर जितने भी युद्ध लड़े उनमें भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया और इन युद्धों पर आने वाली लागत का वित्त पोषण भी भारतीयों की ही जेब से किया। इनमें से किसी भी युद्ध पर ब्रिटिश सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। 19वीं सदी के दौरान भारत की संपत्ति का 450 मिलियन लीरा विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्धों पर खर्च किया गया। इन युद्धों में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या 8 लाख तक पहुंच गई थी। हालांकि भूख के कारण सभी भारतीयों ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे, ऐसे भी भारतीय जवान थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के जुलूस से तंग आकर इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का फैसला किया और एक गुप्त संगठन का गठन किया। इस संगठन के सदस्य अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों और उनका साथ देने वालों को निशाना बनाते थे। वे तन्हा सफ़र करने वाले अंग्रेज़ मुसाफिरों के साथ मुसाफिर खानों या रास्ते में दोस्त बन जाते थे और फिर उचित समय पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते थे। उसके बाद हाथ लगने वाले धन या सामान को संगठन को सौंप दिया जाता था ताकि गरीब और भुखमरी का शिकार लोगों के बीच उसे बांट दिया जाए। कभी कभी इस धन को ऐसे स्थानीय शासकों को दिया जाता था जो उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं करते थे। ये स्वतंत्रता सेनानी बहुत ही खुफिया और होशियारी से अंग्रेज़ों का शिकार करते थे। अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारने और उनके शवों को नष्ट करने में इन्हें इतनी महारत हासिल थी कि जब सिपाही मरने वाले की खोज करने आते थे तो स्थानीय लोग उनके कत्ल को किसी वहशी जानवर या भूत प्रेत से जोड़ दिया करते थे। 1831 में अंग्रेज़ों ने इस संगठन को पहचानने और उसे नष्ट करने के लिए एक विशेष दस्ते का गठन किया। देश भर में फैले जासूसों के जरिए अंग्रेज़ों ने इनका पता लगा लिया और संगठन से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद विशेष दस्ते ने जितनी जानकारी संगठन के बारे में जुटाई वो उसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं थी। दरअसल इस संगठन को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को दूसरे सदस्यों के बारे में बहुत कम जानकारी होती थी या बिल्कुल ही जानकारी नहीं होती थी। इस स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं की होशियारी और राजदारी के कारण इसे नष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने 70 साल प्रयास किया। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में ब्रिटेन इस संगठन को नष्ट करने में सफल हो सका। 70 साल तक अंग्रेज़ों को इसका नाम सुनते ही पसीना छूट जाता था और काफ़ी समय तक लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये संगठन खत्म हो चुका है। इस संगठन के अलावा भी भारत में कई अन्य लोकप्रिय आंदोलन शुरू हुए। 1857 के आरंभिक दिनों में उत्तरी शहरों से स्वतंत्रता आंदोलन के शुरू होने के समाचार अंग्रेज़ों के कानों तक पहुँचे तो उनकी चिंता बढ़ गई। लोग छोटी रोटियां पकाते थे जिन्हें चपाती कहा जाता था, उन पर एक विशेष निशान बना होता था। ये रोटियां लोगों के बीच मुफ्त में बांटी गईं। प्राचीन काल से ही उत्तर भारत के लोग जब किसी बड़ी घटना की खबर एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते थे और उसका मुकाबला करने की तैयारी करना चाहते थे तो वे चपाती पकाते थे और लोगों के बीच बांटते थे। अंग्रेज़ों को चपातियां पकाने और उसके वितरण का कारण नहीं पता था। दूसरी ओर वे लोगों से एक दूसरे को रोटी नहीं देने के लिए भी नहीं कह सकते थे। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वे इस तरह एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुखों में से एक ने एक पत्र लिखा, एक अजीब और रहस्यमय घटना घट रही है जिसका कारण अज्ञात है। लोगों के समूह छोटी छोटी रोटियां पकाते हैं और उन्हें एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में ले जाते हैं। इसका अर्थ क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। 1857 की शुरुआत के साथ ही भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन 100 वर्ष पुराना हो गया था। इन वर्षों में लोगों को धीरे धीरे ये विश्वास हो गया कि भारत में ब्रिटिश शासन 100 वर्षों से अधिक नहीं टिक सकेगा। चपातियों के जरिए संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। एक बैरक में सैनिक एक दूसरे को एक बड़ा लिली का फूल दे रहे थे जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था। फूल की डंडी पकड़कर प्रत्येक सैनिक एक पल के लिए उसे देखता था और फिर उसे अपने दूसरे साथी को सौंप देता था। अंग्रेजों को इसका मतलब तब समझ में आया जब बहुत देर हो चुकी थी। बैरक में नई राइफलों को आए कुछ समय गुजरा था। इन राइफलों के कारतूसों पर तेल लगाया जाता था ताकि वे राइफल की बैरल में अच्छी तरह से फिट हो जाएं। सैनिकों को पता चला कि कारतूसों पर लगाया जाने वाला तेल गाय और सुअर की चर्बी से तैयार किया जाता है। हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और उसकी हत्या को पाप समझते हैं, जबकि मुसलमानों का मानना है कि सुअर का मांस और उसकी चर्बी अपवित्र है। 26 फरवरी 1857 को 85 भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया और घोषणा की कि वे इनका प्रयोग नहीं करेंगे। जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि इन कारतूसों का प्रयोग अन्य बैरकों में भी नहीं किया जाएगा, तब वे विरोध करना बंद कर देंगे। गैरिसन के ब्रिटिश कमांडर ने तुरंत कोर्ट मार्शल बुलाया और इनमें से प्रत्येक सैनिक को 10 साल जेल की सजा सुनाई। अगले दिन अन्य भारतीय सैनिकों ने बैरक की जेल की ओर मार्च किया और अपने हमवतन सैनिकों को जेल से आज़ाद करवा लिया। सैनिक फिर ब्रिटिश अधिकारियों के क्वार्टर में गए और उन सभी को गोली मार दी। उसके बाद बैरकों में आग लगा दी और भारत की राजधानी दिल्ली की ओर मार्च किया। दिल्ली उनसे सिर्फ 65 किलोमीटर दूर थी। इस दौरान गाजियाबाद से नज़दीक बहरामपुर चौकी पर भी आंदोलनकारी सैनिकों का नियंत्रण हो गया और वे भी दिल्ली की ओर बढ़े। जब क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली पहुंचे तो अंग्रेजों की कमान के अधीन भारतीय सैनिक उनके साथ शामिल हो गए और शहर शीघ्र ही भारतीयों के हाथों में आ गया। भारत का सबसे बड़ा हथियार डिपो दिल्ली में स्थित था। भागने से पहले अंग्रेज अधिकारियों ने इस गोदाम को उड़ा दिया ताकि हथियार क्रांतिकारियों के हाथ न लग जाए। भारतीय सैनिक बादशाह के महल की ओर बढ़े। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, 70 साल से ज्यादा की उम्र में भी शाह जफर भारत के सम्राट के रूप में इस महल में मौजूद थे। कई वर्षों तक वे एक औपचारिक शासक रहे। वे महल में रहते थे लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं थी और सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। मुगल साम्राज्य ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से उत्तरी और मध्य भारत के एक बड़े इलाके पर शासन किया था। 200 वर्षों के दौरान धीरे धीरे भारत में प्रवेश करने वाले अंग्रेजों ने मुगल राजाओं की शक्ति को इतना कम और सीमित कर दिया कि इस राजवंश के अंतिम शासक के पास सिर्फ नाम भर के लिए शासन बचा था। कंपनी मालिकों ने भारत में अपनी उपस्थिति को कानूनी रूप देने के लिए बहादुर शाह द्वितीय को उनके पिता की तरह महल में सम्राट बनाए रखा था। इसके बाद भी उनका दावा था कि वे व्यापार कर रहे हैं और बहादुर शाह देश के शासक हैं। बहादुर शाह ने क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व संभाला और उनसे अन्य शहरों को भी आज़ाद कराने का आदेश दिया। कुछ समय बाद आगरा और कानपुर जैसे शहरों पर भी भारतीयों का नियंत्रण हो गया। जुलाई 1857 में लखनऊ शहर भी क्रांतिकारी सेना के हाथ में आ गया। भारत का ब्रिटिश गवर्नर इसी शहर में भारतीय सैनिकों की पकड़ में आ गया, जिसे मार दिया गया। ये क्रांति, जिसे अंग्रेजों ने बगावत का नाम दिया, भारत के पूर्वी राज्यों तक फैल गई। इस आंदोलन में मुसलमानों और हिंदुओं ने एक दूसरे से कांधा मिलाकर संघर्ष किया। अब अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहे थे बल्कि आम लोग भी आंदोलन में शामिल होने लगे। मध्य भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक ग्वालियर शहर में एक 20 वर्षीय लड़के ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने शहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व संभाला और भीषण लड़ाई के बाद शहर के मजबूत किले को अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया। इस युद्ध में जो जनरल अंग्रेजों का सेनापति था वो सही समय पर लौटने और एक युवा भारतीय लड़की से हुई हार की भरपाई करने के लिए शहर से भाग गया। भारत के दूर दराज इलाकों में जहां आबादी कम थी या अंग्रेजों को बाहर निकालना संभव नहीं था, वहां लोगों ने जिस तरह भी संभव था उनका विरोध किया। ब्रिटिश जनरलों में से एक ने अपनी डायरी में लिखा, एक बूढ़ा भारतीय व्यक्ति मेरी रसोई में काम करता है। आज मेरी आंखों के सामने वो चीनी मिट्टी के बर्तन और क्रिस्टल के बर्तन जमीन पर पटक रहा था। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, आज तक आप आदेश दे रहे थे और अब हमारी बारी है।